Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajata Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojvalangam Parasumrigavara Vetihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutamamaraganir Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Saktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sishyam Tantu Takam Vartika Karamanyan Asmat Guram Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreya Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharine Om Shanti 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 Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Nama Shivaya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Mridaya Nama Om मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम शिवाय शिवाय नम ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम।
आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है।
विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रवाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत् सुसुप्तः पुमान् रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भाञ्च नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो इमां सुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्धि तत्पुनरस्तथा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्।
दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के प्रसंग में आठवां श्लोक है।
विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये।
वेदांत दर्शन का बहुत गहन चिंतन हो रहा है। एक के बाद एक वेदांत के रहस्य को इन स्तोत्रों के द्वारा प्रकट हो रहा है, उजागर हो रहा है। अभी तक पहले श्लोक से लेकर ये सात श्लोक तक जो कुछ भी विचार हुआ है, उन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि एकमात्र सत्ता और स्फुरणा परमात्मा के अलावा अन्यत्र कहीं किसी में नहीं है। अन्य किसी वस्तु में न तो उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, न अन्य किसी वस्तु के अपने स्वतंत्र प्रकाशित होने की क्षमता है। यदि कोई वस्तु प्रकाशित होते हैं यानी हमें ज्ञात होते हैं, तो वह ज्ञान होने में भी परमात्मा का प्रकाश यानी परमात्मा का ज्ञान ही काम करता है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र दिख रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, तो भी उसकी स्वतंत्रता अस्तित्व में भी परमात्मा की ही सत्ता काम कर रही है। इसके बावजूद भी लोगों को ये भ्रांति होती है कि ये वस्तु स्वतंत्र सत्ता वाले हैं और स्वतंत्र ज्ञात होते हैं, स्वतंत्र प्रकाशित होने वाले हैं, ये हमें भ्रांति होती है। इन सात श्लोकों के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसको एक सार के रूप में आठवें श्लोक में बता रहे हैं। पहले ये निष्कर्ष निकला, सुरेश्वराचार्य जी ने इसके बारे में थोड़ा संकेत किया है। प्रकाश व्यतिरेकेण पदार्थ कोऽपि नास्ति चेत् परमार्थोपदेशांतो व्यवहार कथम भवेत। मान लो कि पूर्व पक्ष के तरफ से प्रश्न उठा रहा है, व्यवहार को सत्य मानने वाले, जगत को सत्य मानने वाले, पदार्थों को स्वतंत्र सत्य मानने वालों के तरफ से ये प्रश्न है। वो कह रहा है प्रकाश व्यतिरेकेण, सत्ता और प्रकाश के अतिरिक्त जगत में कोई भी वस्तु का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऐसा मानते हो तब यह मानना पड़ेगा कि एक ही वस्तु है जगत में और उसके अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वेदांत का यही सार संग्रह है, ये वेदांत का यही मूल सिद्धांत है। पारमार्थिक एक सत वस्तु ब्रह्मा, परमात्मा, महेश्वर, आत्मा, अब जिन नामों से भी कह दो, उस परमार्थिक एक सत वस्तु के अलावा और कोई भी वस्तु अस्तित्व में है ही नहीं। यदि ऐसा है तब परमार्थोपदेशांतो व्यवहार कथम भवेत, तो बंधन से लेकर मोक्ष पर्यंत और जीव को बंधन से छुटाने का उपाय, गुरु और शिष्य का संबंध, ये सब कैसे संभव होगा? कौन किसको उपदेश करेगा? कौन किसके पास उपदेश सुनने के लिए जाएगा? यदि एक वस्तु के अलावा दूसरा कोई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है तो ये तुम्हारा वेदांत ही बेकार है, क्योंकि प्रेमपुरी आश्रम ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि किसको कौन उपदेश सुनाएगा, कौन उपदेश सुनने जाएगा, इस व्यवहार का क्या करोगे, इस व्यवहार का लोप हो जाएगा। पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न है। परमार्थोपदेशांत, परमार्थ माने ये उपदेश का अंतम अंत कहां है? गुरु शिष्य भाव से उपदेश का अंत कहां होता है? एक पारमार्थिक सत्ता की प्राप्ति तक होती है, तो उसका अंत कहां जाकर होगा, इसका क्या होगा? इस रूप में उसने प्रश्न के रूप में रख दिया है। एक परमात्मा सत्ता के अलावा और कोई वस्तु यहां नहीं है, तो फिर कस्य बंधस्य मोक्षस्य, बंधन किसको होगा, बंधेगा कौन, फिर मुक्त कौन होगा? क्या वही परमात्मा खुद बंधता भी है, बंध जाता है, और वही परमात्मा खुद मुक्त होता है? तो वही परमात्मा अकेले बंध जाता है, वही परमात्मा अकेले मुक्त हो जाता है, तो मुक्त कौन करता है? वो अपने आप मुक्त हो जाता है, तो फिर ये गुरु शिष्य का व्यवहार किस काम का, शास्त्र उपदेश का क्या काम प्रयोजन है? मायाया लक्षणम किम स्यात् इत्येवं परिपृच्छतः। तीन प्रश्न पूर्व पक्ष ने यह आठवें श्लोक को आरंभ करने से पहले, सात श्लोक तक के प्रसंग को सुनने के बाद पूर्व पक्ष ने ये तीन प्रश्न रखा। पहला प्रश्न रखा परमात्मा एक ही है, एक के अलावा और कुछ जगत में कुछ भी नहीं है, दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है, तो फिर मोक्ष पर्यंत उपदेश किसको किया जाएगा और कौन करेगा? दूसरा होगा परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, तो बंधन किसको होता है? क्या परमात्मा को ही बंधन होता है कि परमात्मा के भिन्न को होता है? और यदि भिन्न को होता है तो फिर परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, यह क्यों कहा जा रहा है? और परमात्मा के अलावा यदि कोई दूसरा कोई नहीं है तो यह कहना पड़ेगा कि बंधन उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। अब परमात्मा को भी बंधन प्राप्त होता है तो फिर जीवात्मा मुक्त होने की आशा क्यों करेगा? है? समर्थ पुरुष भी जब फंस जाता है तब उस भाव को प्राप्त होने के बाद भी फंसना पड़ता है तो जीवात्मा कहता है कि हम पहले से फंसे हैं तो फिर क्यों फेरी फंसने जाएंगे? क्यों ब्रह्म होने के बाद भी फंसना पड़ता? क्योंकि ब्रह्म फंसता है, आप बता रहे हो, तो फिर क्या फायदा हुआ? है प्रक्षालनाधि पंकस्य दूरात अस्पर्शनम वरम। कहीं कीचड़ था रस्ते में, कीचड़ था और जान रहे हैं कि ये कीचड़ है, और कीचड़ में पांव रखने के बाद निकलने से फिर धोना पड़ता है, तब कीचड़ में पांव पहले रखे ही क्यों? कीचड़ में पांव रखे बिना यदि निकलने की दूसरा रास्ता है तो फिर कीचड़ में ही पांव क्यों रखना? और कीचड़ में पांव रखा फिर धोना पड़ता है तो फिर क्यों रखना है? ये बात अलग है कि दूसरा उपाय ही नहीं है तो कीचड़ में पांव रख के भी जाना पड़ेगा और निकलने के बाद धोना भी पड़ेगा। जब कीचड़ में पांव रखे बिना भी आप निकल सकते हो तो कीचड़ में पांव रखना ही क्यों है? प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम। बाद में जब उसको धोके हटाना ही है तो पहले से ही उसका स्पर्श ही मत करो, है ना? समझदारी तो यही है। जगत को जब बाद में जाकर इसको निषेध करना है, हटाना है, हाँ, तब फिर पहले ही इसको स्वीकार क्यों करना? और आप लोग सब यही करते आ रहे हो, पहले स्वीकार करो बड़े खुशी से, बैंड बाजा बजा बजा कर, पार्टी दे दे कर, हाँ, नाच नाच कर स्वीकार कर लो, बाद में रो रो के हटाओ इसको। सभी यही करते हैं, हटाते सब है, हटता सब है, सभी हटाते हैं, सभी से सब हट जाता है, नहीं भी हटाओगे तो हटेगा वो। लेकिन जिस खुशी से तुमने इसको स्वीकार किया था, क्या हटते समय वही प्रसन्नता रहती है? है? और यदि अपने आप हटाने चाहो तो हटेगा नहीं, रोना पड़ेगा, ये अभी तक क्यों नहीं हट रहा है? आपके सारे प्रयत्न बेफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस जगत को हटाने के लिए आप रात दिन एक कर रहे हैं, अभी नहीं हट पा रहा है तो भी रो रहे हो, और तुम्हारे प्रयत्न से नहीं हट रहा है, चलो ईश्वर एक एक करके हटा देता है तो भी रोते हो कि ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया। तुम्हारा रोना कभी नहीं छूटता है। बंधन स्वीकार करते समय हंसते हो और बंधन मुक्ति के लिए प्रयत्न करते, उपाय करते, क्यों रोते हो? छूट रहा है, छूटने दो। अपने आप छोड़ना चाहिए था, नहीं छूटा तो चलो प्रकृति ने छुटाया, परमात्मा ने छुड़ा दिया, प्रसन्न हो जाओ भाई। बंधन जिस प्रसन्नता से स्वीकार किया था, इससे मुक्ति भी उसी प्रसन्नता से ही करो, खुशी खुशी से विदाई करो जगत को, जागतिक संबंध को, जागतिक पदार्थों को खुशी खुशी से विदाई करो। देख लिया बहुत हो गया, भोग लिया बहुत हो गया, उपयोग कर लिया बहुत हो गया, अनुभव कर लिया बहुत हो गया। कतिनाम सुता नलालिताम कतिनाम बधू रभुंजी। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपनी मां को समझाते हैं, जब उन्होंने कहा कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे आज्ञा दो तुम, हाँ, ये जगत से मैं निकलना चाहता हूं, इस बंधन से मैं फंसना ही नहीं चाहता हूं, निकल जाऊंगा, प्राप्ति से पहले ही मैं निकल जाऊंगा, सन्यास लेने की अनुमति दो। मां रोने लग गई, बेटा तू सन्यास लेगा, मेरा और कौन है यहां जगत में तेरे अलावा, हाँ, कोई आश्रय कोई आधार मिलेगा करके शादी किया, पति चला गया, तुम्हारा बाप चला गया, बिना पूछे चला गया, बाय बाय भी नहीं किया, हाई हाई करते हुए गया, है किया कि नहीं? कोई बाय बाय करके जाता है जाने वाला? कोई वाई वाई करके जाता है? सब हाई हाई करते जाते, हाय अब क्या होगा, हाय ये क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घर का क्या होगा, मकान का क्या होगा, तमारो शू थसे, ले जी हाय हाय, अरे बाय बाय करो, प्रसन्नता से विदाई करो। शंकराचार्य जी की मां कहती है ना, मेरे तो तुम हो, एक आश्रय पति था वो भी चला गया, और एक तुम्हारे भरोसे में मैं जी रही हूं, और मुझे आगे का जीने का एक आधार भी तुम ही हो जब तक जीऊंगी, और तुम भी चले जाओगे। तो मां प्रसन्नता से विदाई नहीं कर रही है, हाँ बाय बाय नहीं कर रही है, हाय हाय करने लगी है। शंकराचार्य जी ने कहा कि ऐसे ये विदाई नहीं करने वाली है, कुछ खेल खेलना चाहिए, है कुछ नाटक करना चाहिए। तब चले गए नहाने के लिए, वो तो कपड़ा धो रही थी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे नहा रही थी, कपड़ा धोकर फिर नहाना था कि मां थोड़ा मैं भी पानी में तैरता हूं। अच्छा बेटा जाओ खेलो, संन्यास लेने जाऊंगा तो मना किया, तो पानी में नहाने के लिए जाता हूं तो ठीक है जाओ। इन्हें कहती है कि डूबेगा, उतरने के लिए न डूबने की जगह जाना चाहता है तो जाने नहीं देते, और डूबने की जगह जाना चाहता है तो खुशी से जाओ। हम लोग यही तो करते हैं व्यवहार में, इससे अलावा और क्या कहते हैं। आपका बेटा कहे कि मैं संन्यास लेने जाऊंगा हरिद्वार, तो आप मना करने लग जाओगे। अब आपका बेटा अपने तरफ से प्रस्ताव लेकर मैंने किसी लड़की से प्रेम किया, भले ही विजातीय हो, भले ही दूसरे धर्म की हो, भले ही दूसरे गोत्र की हो, भले ही कुछ भी हो, मैंने लड़की निश्चय कर लिया मां, मुझे शादी करनी है पापा, तो खुशी से कर लो बेटा, तुम खुशी तो हम खुशी, हम राजी हो जाते हैं, विरोध करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। फंसने डूबने के जगह पर जाना चाहता है तो हम बड़े राजी से विदाई कर देते हैं, हम भी मदद करेंगे हाँ तुमको डूबने में, हाँ। और जब डूबता है तो फिर साथ में सब रोने लग जाते हैं। तो मां ने विदाई कर दी शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी तैरते हुए गए बीच धार में, और उनके संकल्प से एक मगरमच्छ खड़ा हो गया, बड़ा भारी मगरमच्छ खड़ा हो गया, और मुख बहा रहा है और उनके पांवों को पकड़ रहा है, और जोर जोर से शंकराचार्य जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मां बचाओ बचाओ, ये मुझे पकड़ रहा है, ये मुझे खा रहा है, निगल रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। मां देख रही है, देखते हुए करेगी क्या, वो उसकी क्षमता से बाहर है, कूदने की हिम्मत नहीं हो रही है नदी में, क्या करेगा, बैठी बैठी रोने लगी, चिल्लाने लगी, चारों तरफ हाई गुहार किया, कोई नजदीक में नहीं है क्योंकि एकांत नदी के किनारे में है, अब क्या करें। तो उस अवस्था में शंकराचार्य जी ने कहा, मां मेरी संन्यास लेने की तीव्र इच्छा थी, तुमने राजी खुशी से संन्यास लेना नहीं दिया, मुझे अब लगता है कि बिना संन्यास के ही मरना पड़ेगा, बिना संन्यास के मरना पड़ेगा, और इस तरह यदि मगरमच्छ के द्वारा खाकर मेरी मृत्यु होगी तो इसको शास्त्र दृष्टि से अकाल मृत्यु माना जाएगा और इससे मेरी सदगति नहीं होगी। कोई बात नहीं है, विधि पूर्वक क्रिया से संन्यास न भी हो, तुम अनुमति नहीं दे रही हो, भले वचन से अनुमति दे दो कि बेटा तू संन्यास ले ले, क्योंकि सारा कर्म वैदिक कर्म संकल्प के द्वारा ही फलीभूत होता है। बिना संकल्प से केवल क्रियात्मक कर्म करोगे तो फलीभूत नहीं होगा, और क्रियात्मक न हो और शुद्ध संकल्प हो तो वही फलीभूत हो सकता है। तो शंकराचार्य जी ने मां को कहा कि तुम अनुमति दो, मैं संकल्प करता हूं यही पानी में कि मैं संन्यास ले रहा हूं, हाँ मैं जब संकल्प करता हुआ मरूंगा तो मेरी संन्यास फलीभूत हो जाएगी, मेरी संन्यास फलीभूत हो जाएगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं अकाल मृत्यु से मेरी दुर्गति नहीं होगी। घुमा फिराकर शंकराचार्य जी ने जब मां के सामने रखा तो मां राजी हो गई, यदि ऐसी बात है तो तू संन्यास लेकर मर, क्योंकि मगरमच्छ तो खा ही रहा है, मरना तो निश्चित है। तो यदि ऐसा संकल्प से ही संन्यास लेकर मरना है, मरना निश्चित है, और यदि संकल्प से तेरा संन्यास पूरा होता है तो मेरी आज्ञा है, तू बेटा तू संकल्प कर कि भू संन्यस्तम मया, संकल्प कर मैं संन्यास ले लिया, ये संकल्प कर। मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे बंधु नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, मेरे सखा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई जगत नहीं, कोई कुछ नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बस शंकराचार्य जी ने संकल्प किया, मां की आज्ञा हो गई तो संन्यास ले ले। तो आज्ञा होते ही मगरमच्छ ने छोड़ दिया। सन्यासी को कौन मारेगा और कौन खाएगा भाई, है? सन्यासी को कौन मारेगा कौन खाएगा, इसलिए तो सन्यासी जीते जी मरा हुआ मुर्दा है। हाँ, बात समझ गए ना, वह वैदिक विधि से संकल्प से मर चुका हुआ होता है, क्योंकि सन्यास की पद्धति ही ऐसी है, विधि ही ऐसी है। अष्टश्राद्ध नांदी श्राद्ध आदि करके सब पिंड आदि कर चुकने के बाद लास्ट में अपनी ही श्राद्ध अपने हाथों से कर लिया जाता है, फिर इसके बाद विरजा हवन होता है, फिर कुछ नहीं, संकल्प ही यही होता है, क्रिया ही यही होती है। तब उसको फिर क्या खाएगा, कौन मारेगा, वो तो पहले ही मर चुका है, क्या मारेगा। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखी है, सन्यासी के कोई भी शारीरिक छोड़ने के बाद कोई विधि नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानाग्नि से पहले ही जला चुका है उस शरीर को। उस शरीर को क्या जलाओगे दोबारे, जले हुए को क्या जलाओगे, जले हुए राख को क्या जलाना,